नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी दूरसंचार इकाई जियो इन्फोकॉम ने विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के समूह से दो बार में कुल 5 अरब डॉलर जुटाए हैं, जो भारत के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा सिंडिकेट कर्ज है। सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह रिलायंस ने 55 बैंकों से 3 अरब डॉलर जुटाए थे। वहीं रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 18 बैंकों से अतिरिक्त 2 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। उन्होंने बताया कि 3 अरब डॉलर का कर्ज 31 मार्च तक लिया जा चुका था, जबकि 2 अरब डॉलर इसी हफ्ते मंगलवार को जुटाए गए। रिलायंस जियो इस कोष का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए करेगी और देश भर में 5G नेटवर्क शुरू करने पर यह राशि खर्च करेगी। सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक रूप से 3 अरब डॉलर का ऋण 55 ऋणदाताओं से जुटाया गया, जिनमें ताइवान के करीब 2 दर्जन बैंकों के अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, MUFG, सिटी, SMBC, मुजीहो तथा क्रेडिट एग्रीकोल जैसे वैश्विक बैंक शामिल हैं। प्राथमिक कर्ज को मिली बढ़िया प्रतिक्रिया के बाद 2 अरब डॉलर का अतिरिक्त कर्ज लेने का फैसला हुआ। इसके बाद 2 अरब डॉलर का नया कर्ज भी 55 कर्जदाताओं से समान शर्तों पर लिया गया। आयकर विभाग द्वारा कालाधन अधिनियम के तहत उद्योगपति अनिल अंबानी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को मुंबई उच्च न्यायालय ने अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को बताया कि विभाग ने बाद में उनके वकील को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद अदालत ने मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी। बुधवार को सुनवाई शुरू होने के बाद आयकर विभाग की तरफ से पहुंचे अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने संशोधित याचिका के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी साइट DLM, स्वास्थ्य सुविधा कंपनी हेल्थ विस्टा इंडिया और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी जनरल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को हरी झंडी मिल गई। सेबी ने बुधवार को बताया कि तीनों कंपनियों ने जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच नियामक के पास IPO दस्तावेज जमा करवाए थे। कंपनियों को 29 से 31 मार्च के दौरान बाजार नियामक का निष्कर्ष मिला। किसी भी कंपनी को IPO लाने के लिए सेबी का निष्कर्ष जरूरी होता है। दस्तावेजों के अनुसार साइंट DLM के IPO में 740 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जिसमें कोई बिक्री पेशकश शामिल नहीं है। वहीं हेल्थ विस्टा इंडिया के IPO में 200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसे शेयरधारक 5,62,92,644 शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। हाल में घोषित विदेश व्यापार नीति 2023 से कारोबारी भावना को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में अग्रणी बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी, प्रमुख उद्योग निकायों ने ये बात कही। भारतीय उद्योग परिसंघ की निर्यात और आयात पर राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन संजय बुधिया ने कहा कि नए विदेश व्यापार नीति में निर्यात प्रदर्शन सीमा में कमी से निर्यातकों के लिए लेन देन लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि नीति में लेन देन की लागत को कम करने पर जोर दिया गया है, जिससे MSME को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी होगा। बुधिया ने कहा कि मुकदमे को कम करने के लिए निर्यात दायित्व में चूक के लिए एक मुश्त आम माफी योजना की शुरुआत एक स्वागत योग्य कदम है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन अरुण कुमार गरोड़िया ने कहा कि FTP व्यावहारिक और सकारात्मक है। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मार्च में धीमी पड़ गईं, जो फरवरी में 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थीं। एक सर्वेक्षण में बुधवार को बताया गया कि नए कारोबारी ठेले मिलने की रफ्तार धीमी रहना इसकी वजह है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक फरवरी के 59.4 से घटकर मार्च में 57.8 हो गया। सेवा PMI का सूचकांक लगातार 20वें महीने 50 से ऊपर बना हुआ है। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन को दर्शाता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में अर्थशास्त्र की संयुक्त निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा, साल 2022-23 की अंतिम तिमाही के अंत में भारत का सेवा क्षेत्र फरवरी में मिली गति के बूते आगे बढ़ा और नए कारोबारी ठेकों तथा उत्पादन में वृद्धि से इसे समर्थन मिला। हालांकि वृद्धि का मुख्य कारक विनिर्माण क्षेत्र ही बना रहा। रोजगार के मोर्चे पर सर्वे में सामने आया कि मौजूदा जरूरतों के लिए कंपनियों के पास पर्याप्त क्षमता है, जिससे रोजगार सृजन बाधित होगा। निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने बुधवार को बताया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में उसे 7000 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके मिले हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे जो ठेके मिले हैं उनमें विभिन्न नई अपतटीय सुविधाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और स्थापना के साथ साथ मौजूदा प्रतिष्ठानों के साथ एकीकरण शामिल है। इसमें बताया गया कि कंपनी को पश्चिम एशिया के एक प्रतिष्ठित ग्राहक से हाइड्रोकार्बन कारोबार के लिए बड़े ठेके मिले। L&T में पूर्णकालिक निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष सुब्रमण्यम शर्मा ने कहा, इन ठेकों का फिर से मिलना ग्राहक की संतुष्टि दिखाता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।